वर्षा के साथ। हरी बहो, सुन पा रहे हो? अगर सुनते हो तो हाथ ऊपर कीजिए, पीछे पीछे, लेफ्ट राइट। यस, आपको वर्षा वर्षा को नहीं सुनना, सभी क्या है आपका परिचय? श्रीमद् भागवत कथा प्रेमियों का हरे कृष्ण भक्तों का और अन्यों का भी जो क्या उपस्थित है, उन सभी का स्वागत है। भागवत की कथाएं तो आप सुन ही रहे थे, जब से ये पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है प्रतिदिन भागवत कथा हो रही है। अभी जगन्नाथ कथा भी हुई तो कभी ये प्रसंग कभी वो प्रसंग, उसी कथा सत्र के अंतर्गत पूरे मास की कथा हो रही है। एक सप्ताह कथा की भी रीति पद्धति है, एक एक मास भर की भी विधि है, कभी पूरे साल भर की भी आगे हम पढ़ेंगे। इसी महात्म्य में तो शिव जी तो पूरे वर्ष भर कथा करते रहते हैं, उन्हीं कथाओं का ये महिमा गान महात्म्य। स्कंद पुराण से ये महात्म्य, अधिकतर आप महात्म्य सुनते हो जो पद्म पुराण का महात्म्य, और इसकी विशेष मांग भी थी इस महात्म्य की जो स्कंद पुराण से है। शंकरदारी प्रभु मुझे आके एक दिन उन्होंने जब सुना कि मैं भागवत कथा महात्म्य सुनाने जा रहा हूं, तो उन्होंने विशेष निवेदन किया कि स्कंद पुराण से जो महात्म्य पुराण सुनाया है उसी महात्म्य को हम सुनाएंगे। व्यास उवाच, तो ये भी और वह भी और अधिकतर वैदिक वाङ्मय की रचना, उसके कथाकार, उसके लेखक, उसके वक्ता, तो आदि कवि महर्षि व्यासदेव ही है, तो उन्होंने कहा एक समय जब नयमी शारण्य में नयमी से सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। सुत गोस्वामी जो एक विशेष आसन पर, ये कोई उतना विशेष नहीं है जिस आसन पर, अच्छा है, धन्यवाद। तो एक विशेष आसन पर आसीन जो सुत गोस्वामी थे, बैठे थे, महामतिम। आसन छोटा हो मोटा हो, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात तो वे कैसे थे, महामति, उनकी मति महान, बड़े बुद्धिमान थे वे। ऐसे महामति सुत गोस्वामी से ऋषया अब्रुवन, ऋषियों ने कुछ विशेष निवेदन किया। और कैसे थे ये ऋषि, कथा अमृत रसास्वाद कुशलः। ये उन ऋषियों का परिचय या वैशिष्ट्य था। श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रस का आस्वादन करने में वे कुशल थे। तो वे थे श्रोता, जैसे आप भी श्रोता हो, तो श्रोताओं को कैसे होना चाहिए, ऐसा भी संकेत यहाँ मिल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा अमृत के आस्वादन करने में जो कुशल है, एक्सपर्ट है, ऐसे ऋषियों ने, ऋषयः उचुः, ऐसे ऋषियों ने महामति सुत गोस्वामी से जिज्ञासा प्रस्तुत की। वज्रम श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिशिष्य गते रागी तौ कथम किंच चक्रतुः। वे जानना चाहते हैं कि जब मथुरा में श्री माथुरे वज्रम अभिशिष्य, जब मथुरा में वज्र राजा बने, का राज्याभिषेक मथुरा में हुआ वज्र या वज्रनाभ जी का, और स्वपौत्रम हस्तिनापुरे, और हस्तिनापुर में अपने ही पौत्र परीक्षित महाराज का अभिषेक हुआ। गते राज्ञी, और फिर आगे बढ़े युधिष्ठिर महाराज और उसे पांचों पांडव और द्रौपदी भी, जब उन्होंने प्रस्थान किया तो तौ, मतलब वे दो, एक तो राजा परीक्षित हस्तिनापुर में और वज्रनाभ मथुरा में, कथम किम च चक्रतुः, उन्होंने क्या किया, कैसे रहे, कैसे कारोबार संभाला अपने अपने राज्यों का, ये जिज्ञासा है बस। और एक बार बीच में मध्य में ये ऋषयः, ये ऋषिगण कुछ जिज्ञासा करेंगे, नहीं तो वैसे इसी प्रश्न का उत्तर ही ये पूरा श्रीमद् भागवत महात्म्य है, उसका उत्तर। सूत उवाच तसद गोस्वामी, उत्तर में कहने लगे, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रार्थना से आप परिचित हो, श्रीमद् भागवत कथा भी जब वे सुना रहे थे प्रथम स्कंद में, उस कथा का प्रारंभ विश्व गोस्वामी इसी प्रार्थना के साथ करते हैं, नारायणम नमस्कृत्य। नमस्कार करके, किसको किसको नमस्कार करके, नारायणम नमस्कृत्य। नरम चैव नरोत्तम को भी नमस्कृत्य, नर नारायण को नमस्कार। देवीं सरस्वतीं नमस्कृत्य, सरस्वती को नमस्कार। और व्यासम नमस्कृत्य, और श्रील व्यास देव को नमस्कार करके, ततः करके जयम मुदीरयेत्। जय हो, जय घोष करना चाहिए, इन सभी को नमस्कार करके ततः जयम उदीरयेत। ये इतिहास पुराणों की कथा का जय घोष करना चाहिए, जय हो श्रीमद् भागवत कथा की, जय हो महाभारत की, जय हो। ये भी जयम मुदीरयेत् हुआ, लेकिन पूरा का पूरा जो घोषणा है, वर्णन है, कथा है, उसका श्रवण कीर्तन करना ही वैसे पूरा जय, पूरा विजय हुआ। तो इन सब को नमस्कार करके, कृष्ण बलरामाय नमः, या श्री कृष्ण बलरामौ नमस्कृत्य। और इसका संस्थापक आचार्यम नमस्कृत्य, श्रील प्रभुपाद को नमस्कार करके जयम मुदीरयेत्। महापथं गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वीपति, जगाम मथुरा विप्रा वज्रनाभं तिदृक्षया। तो महापथ पर जब वे युधिष्ठिर महाराज आगे बढ़े, महापथ स्वर्गारोहण जब हुआ, वो भी महापथ, और उससे भी आगे बढ़े चढ़े भगवान के धाम लौटे, उस मार्ग को महापथम कहा है। महापथम गते, जब युधिष्ठिर महाराज भगवत धाम लौटे, पृथ्वीपति ही तब पृथ्वीपति परीक्षित महाराज को पृथ्वी के पति कहा, उनका वे राजा नहीं थे, वे राजाओं के राजा थे, वे सम्राट थे, उनका साम्राज्य सारे पृथ्वी भर फैला हुआ था, पृथ्वी पति, ऐसे पृथ्वी पति। जगाम मथुराम, मथुरा गए। कहां से? हस्तिनापुर से। पता है हस्तिनापुर कहां है? गंगा के तट पर। तो गंगा का तट तो हजारों मील लंबा है। हरिद्वार से दूर नहीं है, मेरठ से कुछ 20-25 किलोमीटर दूरी पर ही ये हस्तिनापुर, जमुना के तट पर। इस हस्तिनापुर के बाहर ही प्रथम भागवत कथा जहाँ हुई वो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वहाँ से मथुरा आए पृथ्वीपति। संभवतः वे इंद्रप्रस्थ होके आए होंगे। रास्ते में इंद्रप्रस्थ, दिल्ली तो नहीं थी, या दिल्ली का नाम ही, नामो निशान ही, या नाम का निशान, या कोई था ही नहीं। इंद्रप्रस्थ होकर आए होंगे, रास्ते में ही वाया इंद्रप्रस्थ मथुरा आए। वज्रनाभ दिदृक्षया, क्या उद्देश्य था? बस चलो वज्रनाभ को मिल के आते हैं, देखते हैं कैसा है, कैसा कुशल मंगल, कैसे संभाल रहे हैं, रहा है। वज्रनाभ मथुरा का राज। पृथ्व्यम पितृव्यम आगतम ज्ञात्वा वज्रः प्रेम परिप्लुतः। और वज्रनाभ को पता चला कि यह राजा परीक्षित आ रहे हैं, वे अतिथि के रूप में आ रहे हैं, तो शायद कुछ पहले फोन किया होगा, नहीं किया होगा, SMS भेजा होगा, नहीं भेजा होगा। अतिथि कभी भी आ सकते हैं, तो उनके आगमन का रास्ते में है, इसका पता चलते ही प्रेम परिप्लुतः, उनका हृदय प्रेम से भर आया। राजा परीक्षित का स्मरण मात्र से, और फिर भी मुझे मिलने आ रहे हैं, इस बात को वे जब सुने तो प्रेम से उनका हृदय भर आया, उमड़ आया। अभिगम्य अभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम। उनके स्वागत के लिए शहर के बाहर, मथुरा के बाहर वे गए। अभिगम्य, केवल गत्वा नहीं कहे, अभिगम्य से ये संकेत होता है कि केवल अपने महल के बाहर ही उनका उनको मिलने या अगवानी करने नहीं गए, शहर के बाहर गए। और वह उनका स्वागत किया, अभिवाद्य उनका अभिनंदन किया, उनको प्रणाम किया, और आइए पधारिए, सुस्वागतम सुस्वागतम। मंत्रों के साथ भी कुछ पुरोहित पंडित भी साथ में गए, उन्होंने मंत्र उच्चारण किया होगा। तो अपने महल में ले आए, निज मंदिरम कहा, अपने महल को उन्होंने मंदिर, जैसे हमें अपने घर को मंदिर बनाना होता है, हर घर एक मंदिर है, केवल दिल ही मंदिर नहीं, हर घर मंदिर हो। तो राजा परीक्षित ने अपना महल ही मंदिर बनाया था, तो कहा निनाय निज मंदिरम, अपने मंदिर की ओर, अपने महल की ओर उनको लेके आए। परिस्वज्य सतम वीरः कृष्णैक गत मानसः तौवा वे परीक्षित। एक तो वीरः, वे वीर पुरुष, कृष्ण कृष्णैक गत मानसः, जिनके मन में बस एक ही कृष्ण, माम एकम अनन्यश्चिन्तयन्तो अन्यों को त्याग कर बस एक कृष्ण, गत मानसः, जिनका मन सदैव कृष्ण की ओर दौड़ता है, कृष्णमय दौड़ता है, ऐसे राजा परीक्षित ने परिष्वज्य तम वज्र नाम को आलिंगन दिए। राजा परीक्षित हरिभ रोहिण्याद्या हरेर पत्नीर, और फिर भगवान की पत्नियों को मिलने के लिए महल का जो अंतःपुर कहते हैं, इनर चेम्बर्स, या माताएं, महिलाएं, रानियां रहती है, रहती थी, रोहिणी आदि कृष्ण पत्नियां, ये रोहिणी, एक रोहिणी नक्षत्र भी है, और हमारी बलराम की मैया रोहिणी मैया की अभी रोहिणी है, लेकिन ये रोहिणी कृष्ण की पत्नी रोहिणी, सोलह हजार पत्नियों की ये कुछ प्रमुख प्रतिनिधित्व करने वाली रुक्मिणी, रुक्मिणी पत्नी रोहिणी, जिन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया था भगवान ने, भगवान द्वारिका से प्राक ज्योतिषपुर गए, जहा भौमासुर या नरकासुर ने 16,000 राजपुत्रियों को बंदी बनाया था, और भगवान को संदेश भेजा इन राजपुत्रियों ने, अब हम अभी कौन स्वीकार करेगा प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, हमारा स्वीकार कीजिए। तो भगवान गए थे गरुड़ के पीठ पर बैठ के, और पीछे सत्यभामा को बिठा के भी, तो वहाँ जब पहुँचे तो मुरारी मूर नाम के राक्षस, जो सिक्योरिटी इंचार्ज, इस नरकासुर के सिक्योरिटी रक्षा दल के मुखिया, तो उनका वध किए भगवान, तुम मुरारी कहलाए, और फिर जरा इन नरकासुर का भी वध किए, और 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किए। तो उसमें से जो मुखिया थी तो वो है रोहिणी। तो फिर भगवान ने उन सब को भेजा था द्वारका, और भगवान स्वयं गए थे स्वर्ग, और वहाँ से पारिजात वृक्ष लेके लौटे थे, और भी कोई उद्देश्य था, लेकिन साथ में पारिजात वृक्ष भी लेके आए। तो वो रोहिणी मथुरा में रहा करती थी 16,000 रानियों के साथ, और अब उनकी रखवाली कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे ये वज्रनाभ जो भगवान के प्रपौत्र है, आगे बताएंगे वे वहाँ कैसे पहुँचे। ताभि सम्मानितो, तो उन्होंने भी राजा परीक्षित का सम्मान किया है। विश्रांतः सुखमासीनो व्रजनाभ उवाच, तो श्रांत विश्रांत, इतना दूर का प्रवास करके आए थे तो थके होंगे, श्रांत होंगे, तो थोड़ा विश्राम कर लिए। और उसके उपरांत जब सुख से वे बैठे थे राजा परीक्षित, तो उन्होंने वज्रनाभ से कहा, तात हे प्रिय, त्वत्पितृ भी नूनम अस्मत् पितृभि पितामह उदधृता भूरि दुःख औघादहं च परिरक्षितः। तुम्हारे पिता और पिता के पिता और पिता के पिता श्री कृष्ण और उनके पुत्र और उनके पुत्र और ये उनके पितृ पुत्र थे, प्रपौत्र थे वज्रनाभ, तो आपके पिता पिता के पिता उन्होंने हमारे पिता की, हमारे पिता महों की रक्षा की और मेरी भी रक्षा की। अहम च परिरक्षितः, स्मरण दिला, कैसे भूल सकते हैं, भगवान ने उनकी रक्षा की। राजा परीक्षित, आहा, अगर कृष्ण मेरी रक्षा नहीं करते तो फिर मेरा जन्म ही नहीं होता, और फिर सम्राट बनना तो दूर, और हम मिलते कैसे, मिलते तो थे नहीं, मिले भी नहीं होते, लेकिन ये सारा संभव हुआ। आपके पिता और प्रपिता ने हमारे पूरे घराने की, हमारे पिता पिता महा की और मेरी भी रक्षा की। न पारयामि अहम्, और आपके परिवार के, आपके पिता पिता महा ने जो हमारी सहायता की, हमारे परिवार की रक्षा की, हम सभी पर जो उपकार किया है, न पारयामि अहम्, तो उस उपकारों से, उस ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, कठिन है। भूरी दुख औघात, एक दो दुख से, कष्टों से नहीं, कभी कभी दुख आते थे ऐसी बात नहीं, राजा परीक्षित दुख औघम, दुख का प्रवाह, दुख के बाद दुख, कष्ट के बाद कष्ट, विघ्न के बाद विघ्न, उलझनों के बाद उलझने आया करती थी, और हर समय राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, हमारी रक्षा होती रही। कैसे हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। साधु हे वज्रनाभ, मेरी तुमसे एक विशेष प्रार्थना है। त्वामतः प्रार्थयामि, क्या प्रार्थना है, सुखम राज्ये अनुयुज्यताम, अपने राज के कारभार को सुख से संभालो, तुम सुखी रहो, आयुष्मान भव, सुखी भव। बढ़िया से सुख से अपने राज्य को संभालो। और आगे कहते हैं, कोश सैन्यादि जा चिंता, और चिंता छोड़ो। किसकी चिंता छोड़ो? कोश की, अपने खजाने की, अपने ट्रेजरी की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करो। सैन्यादि जा, और सैन्य और सेना और सैन्य को बढ़ाना और लड़ाई, ये सारी चिंता को तुम छोड़ो। मनागपी न कार्या ते सुसेव्या किंतु मातरः। एक कार्य तुम करो, और वो क्या है? अपनी माताओं की रक्षा करो, अपनी माताओं को संभालो, अपनी माताओं की सेवा करो। ये 16,000 जो भगवान की रानियां हैं, उनकी बढ़िया से भली भांति सेवा करो। बस बाकी कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान अपने धाम लौटने के पहले प्रभास क्षेत्र में थे। जो द्वारिका से दूर नहीं है प्रभास क्षेत्र, गुजरात में, सरस्वती मैया की, सरस्वती के तट पर भगवान बैठे थे। कैसे बैठे थे, ये सब वर्णन और के सौंदर्य का वर्णन, चतुर्भुज, एक पीपल के पेड़ को अपनी पीठ लगा के, तो पीपल का पेड़ है ये संसार, और भगवान अब संसार से दूर जाएंगे तो अपनी पीठ पीपल की, पीपल के पेड़ की ओर भगवान अपने धाम लौटने की तैयारी में है। ये मौसल युद्ध मुसल का उपयोग किया और युद्ध खेले सारे यदुवंशज द्वारकावासी। अब वे नहीं रहे, बलराम भी आगे बढ़े, अपने धाम लौटे। अब कृष्ण को लौटना ही था उसी समय। वैसे उद्धव से भी मिले थे और मैत्रेय मुनि से भी मिले थे। और उस समय उन्होंने दारुक को बुलाया और कहा कि जाओ 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 द्वारका लौटो। और द्वारका वासियों को, मेरे रानियों को, वहां से द्वारका से हटना होगा। जिस क्षण मैं ये संसार त्यागूंगा, क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, जब होगा इस पृथ्वी को छोड़ के मैं स्वपदम अपने धाम लौटूंगा, उसी क्षण द्वारका जिस भूमि पर स्थित है वो जल में डूबने वाली है। मैंने उस जमीन को, उस भूमि को उधार लिया था इस शर्त तक कि जब तक मैं रहूंगा इस संसार में तभी तक उस जमीन का उपयोग होगा पुनः, और उसके उपरांत समुद्र पुनः उस जमीन का स्वीकार करेगा या उसको लौटाना पड़ेगा, उस जमीन को, भूमि को। तो हे दारुक तुम जाओ और अर्जुन को कहना, सारे बचे हुए जो नागरिक है द्वारिका में और उसमें भी रानियां है, उनको ले जाए वहां से सुरक्षित स्थान पर। तो इस आदेश का पालन, तो दारुक गए और अर्जुन को संदेश दिए। अर्जुन सभी को लेके हस्तिनापुर, मथुरा हस्तिनापुर लौटे। 7 महीनों के उपरांत वे लौटे, अर्जुन को भेजा था जाके पता लगवाओ कैसे है प्रभु, आगे की क्या उनकी योजनाएं है इत्यादि इत्यादि का पता लगवा के जल्द आना है। लेकिन अर्जुन गया तो कई महीने भी 7 महीने बीत गए तो कई सारे अपशकुन भी दिख रहे थे और इसे चिंतित थे और शंका थी क्या इसका अर्थ मतलब ये तो नहीं है। तो पता ही चला जब अर्जुन लौटे और फिर उन्होंने सारे रहस्य का उद्घाटन किया जो भगवान नहीं रहे। तो ये समाचार प्राप्त होते ही पांडवों ने निश्चय किया अब शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, ऐसी स्थिति उनकी, बिना भगवान के हम इस संसार में अब जीना नहीं चाहते। तो उस समय उन्होंने राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट बनाए, वहां की गद्दी संभालने के लिए कहा और सभी रानियां और वज्रना भी मथुरा आए हैं और मथुरा में वज्रनाभ कारोबार संभाल रहे हैं मथुरा राज्य का। तो राजा परीक्षित जानते थे कि भगवान की विल, जिसको कहते विल, लास्ट विल, इच्छा थी कि उनके जो शेष जो बचे हैं द्वारिका में उनकी रक्षा हो, रानियों की रक्षा हो, और जिम्मेदारी दी थी अर्जुन जी को। अर्जुन भी नहीं रहे तो अब रक्षा करेंगे वज्रनाभ मथुरा में रक्षा के लिए, वही कर सकते हैं। तो सुसेव्या किंतु मातरहा, अपनी माताओं की सेवा करना यही तुम्हारा मुख्य कार्य है। निवेद्यमयि कर्तव्यम सर्वाधि परिवर्जनम, तुमको कोई चिंता है कोई समस्या है तो मुझे जरूर कहा करो, मैं संभालूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। श्रुत्वा एतत् परम प्रीतो वज्रस्तम प्रत्युवाच, तो जब वज्रनाभ सुने ये सब वचन राजा परीक्षित से तो प्रसन्न हुए और वे स्वयं कहे आपने जो भी कहा आपके लिए उचित ही है हे पृथ्वीपति, हे राजा परीक्षित। वैसे आपके पिता और पितामहों ने भी तो हम पर कुछ कम उपकार नहीं किए हैं और मुझे जो धनुर्विद्या तो मैं आपके पिताश्री से तो सीखी है। और जहां तक आपने कहा कि चिंता मत करो चिंता, हाँ हाँ मुझे वैसे कारोबार की, राज्य की, कोष की, सैन्य की कोई चिंता नहीं है, लेकिन एका किंतु वे एका परमा चिंता, लेकिन मुझे एक बात की विशेष चिंता बनी रहती है। तत्र किंचित विचार्यता, उस पर आप थोड़ा विचार कीजिए, ऐसा कह के फिर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। माथुरे त्वभिषिक्तोपि सितोहं निर्जने वने, मुझे मथुरा का राजा तो बना दिया, अच्छा हुआ मैं राजा तो बना लेकिन यहाँ कोई है नहीं, ये तो निर्जन वन जैसा ही मैं अनुभव कर रहा हूं। बहुत सुना था वृंदावन मथुरा के संबंध में, यह कितनी रौनक और यह कितनी चहल पहल और कितने भक्त और कितने गाय और गोपियां और ये और वो सब कुछ हमने बहुत सुना था, लेकिन मैं जब से यहाँ पहुंचा हूँ और जब राजा जब से बना हूं तो निर्जने वने भगता वै प्रजा तत्र यत्र राज्यम प्ररोचते। और फिर मैं राजा तो हूं लेकिन प्रजा कहा है, राजा का तो तभी आनंद आता है जब प्रजा हो, खूब प्रजा हो, बहुत लोग हो, जनता हो और फिर लेन देन हो राजा और प्रजा का, लेकिन प्रजा है कहा, ये तो निर्जन वन ही है, ऐसा ही मैं अनुभव कर रहा हूं और ये मेरा चिंता का कारण है। और वैसे ये चिंता वज्रनाभ की ही नहीं थी, ये चिंता ये सारे रानियों की भी थी। तो जब उन्होंने राजा परीक्षित ने कहा कि देखो देखो माताओं की खूब सेवा करना, हाँ मैं सेवा तो करना चाहता हूं लेकिन मुझे भी और उनको भी इस बात की चिंता तो है कि यहाँ है कोई है नहीं। तो हुआ जब परीक्षित महाराज इस बात को सुने तो उन्होंने थोड़ा विचार किया और उनको स्मरण आया, ये उलझन है, इसके ऊपर सुलझन कोई उपाय एक व्यक्ति हमको बता सकते हैं, एक व्यक्ति की हम सलाह कर सकते हैं। वे कौन है? नंदादीनां पुरोहितं शांडिल्यं। नंद महाराज और नंद परिवार, नंदादीनां जो पुरोहित शांडिल्य ऋषि, क्यों न हम उनकी सलाह करें। गर्ग मुनि गर्गाचार्य यदुओं के वे पुरोहित थे, तो नंदादीनां पुरोहितः शांडिल्यः, तो शांडिल्य को आमंत्रित किए, बुलाने भेजे। वज्र संदेह नुत्तये, और उद्देश्य ये था कि राजा परीक्षित और इन रानियों को भी चिंता से मुक्त कैसे किया जाए। तो संदेश जब मिला तो हुआ वज्रनाभ वहां अपने पर्णकुटी में निवास करने वाले पहुंचे, महल में पहुंचे मथुरा में। पूजितः वज्रनाभेन, तो विशेष सत्कार सम्मान पाद प्रक्षालन और आसन भी जब दिया तो राजा परीक्षित समझाए सारा इतिहास। राजा परीक्षित और वज्रनाभ और सभी रानियों की चिंता का जो कारण है उसको समझाए। तब शांडिल्य ऋषि परिसांत्वयन उभो, उन दोनों का सांत्वना, दोनों को सांत्वना देने के उद्देश्य से बहुत कुछ अब कहने वाले हैं। शांडिल्य उवाच, शांडिल्य महोदय की, शांडिल्य मुनि की, अब जो वे सुनाएंगे मथुरा वृंदावन का वर्णन सुनाएंगे। श्रणुतम दत्त चित्तौ मई रहस्यम रज भूमिजम। सुनो सुनो, और कैसे सुनो? दत्त चित्तौ, बड़े ध्यान से सुनो, एकाग्र चित्र होके सुनो। आप वैसे कर रहे हो ना? जब भी सुनना होता है तो कैसे सुनना चाहिए? दत्त चित्तो, एकाग्र चित्त, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इत्यादि इत्यादि। इसको ध्यान पूर्वक इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि मैं रहस्य सुनाने जा रहा हूं। कोई साधारण बात तो नहीं है ये, बात कोई हर रोज की कैजुअल टॉक तो नहीं है। रहस्यमयी बात मैं समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान पूर्वक नहीं सुनोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान पूर्वक सुनो, ब्रजभूमि का रहस्य मैं सुनाने जा रहा हूं। व्रजनम व्याप्तिम व्याप्तिरुत्युक्त्या व्यापनाद् व्रज उच्यते। कि जो ब्रज कहते, ब्रज वृंदावन का एक नाम ब्रज, ब्रज मंडल, तो इसकी व्यापकता, सर्वव्यापकता के कारण इसकी कोई सीमा ही नहीं, असीम है ये ब्रज मंडल। व्यापनात् ब्रज उच्यते, इसलिए इस वृंदावन को ब्रज कहते हैं। शांडिल्य ऋषि कहे, गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। और कैसा है ये ब्रज, कैसा है ये वृंदावन, और उसके अंतर्गत अंतर्गत मथुरा भी है। गुणातीतम, गुणातीत है, गुणातीत है, दिव्य है, गुणातीत, तीन गुणों से परे है ये वृंदावन। परब्रह्म भगवान से अभिन्न है ये धाम। भगवान जैसे परब्रह्म, तो ये धाम भी परब्रह्म है। सदानंदम परम ज्योतिर, और सदानंद सर्वत्र आनंद ही आनंद इस धाम में। मुक्तानां पदम अव्ययम्, और मुक्तों के लिए मुक्त वहां पहुंचते हैं। परम पदम अव्ययम्, पदवी को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम लौटते हैं मुक्त। जो भक्त, जो मुक्त है, वे ऐसे धाम लौटते हैं, पहुंचते हैं। तस्मिन्नन्दात्मज कृष्ण सदानंद नंदांग विग्रह। तस्मिन्, तो ऐसे ऐसे वृंदावन में, ऐसे ब्रज में नंदात्मज कृष्ण, कृष्ण जो कौन है? नंद आत्मज, आत्मज उनसे उत्पन्न आत्मा, आत्मज नंद महाराज से उत्पन्न जन्मे कृष्ण। सदानंद और विग्रह रूप वाले हैं, रूप है उनका विग्रह, सच्चिदानंद घन। सदानंद, सदानंद विग्रह, आनंद विग्रह। भगवान कैसे है? आनंद विग्रह, आनंद की खान है, रस की खान है, रसो वैसा। वे रस के ही बने हैं, रस के विग्रह, रस की अखिल रसामृत विग्रह सिंधु है वे। आनंद ही आनंद। नंद के घर क्या हुआ? कहते भगवान जन्मे तो कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हो? जिनको पता नहीं था, कई लोग भाग रहे, दौड़ रहे हैं, गोकुल की ओर दौड़ रहे थे। सारे ब्रज भर के, हर गांव के लोग गोकुल जा रहे थे, तो कई जा भी नहीं रहे थे, अभी अभी जगे थे, उनको पता नहीं था क्या हुआ है, कहाँ जाना है, क्या ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जो जाने वाले थे वो कहते, आप नहीं जानते हो नंद के घर क्या हुआ? नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर, नंद के घर, नंद के घर, नंद के घर, नंद के घर में भयो, भयो ब्रज भाषा सी भाषा है। नंद के घर में भयो हुए, कौन हुए? आनंद भयो। नंद, नंद भवन में आनंद हुए, कृष्ण हुए नहीं कह रहे थे। नंद के घर में क्या हुआ? आनंद हुआ, मतलब ही कृष्णानंद हुआ। आनंद के जो कारण है, आनंद के कारण कृष्ण है, वे कृष्णानंद हुए या सच्चिदानंद हुए है, जन्मे है गोकुल में, हम जा रहे वहां पर। नंद के घर आनंद भयो, तो सदानंद, सदानंदांग विग्रह ऐसे। तो ऐसे श्री कृष्ण जिस वृंदावन धाम की जय, जिस वृंदावन में रहते हैं, नंदात्मजः कृष्णः। एक तो भगवान वहां भी रहते हैं, गोलोक में रहते, गोलोक एव निवसति, लेकिन वहां जन्म नहीं लेते। जन्म लेने के लिए उनको गोकुल में आना पड़ता है, गोकुल में आके जन्म लेते हैं। ये गोकुल वृंदावन का ये वैशिष्ट्य है। हाँ? कुछ लीलाएं वहां नहीं होती, केवल यही पर होती है। तो इस वृंदावन में कृष्णा नंदात्मजः कृष्णा जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। और कैसे है श्री कृष्ण? आत्मा रामस्य अप्तकामः। और कृष्ण, कृष्ण आत्मा राम है। कैसे है कृष्ण? कहो कैसे है कृष्ण? आत्मा राम है, आत्मा राम है, आत्मा में उनको आराम, आत्मा राम, सेल्फ सेटिस्फाइड। अंग्रेजी में सेल्फ, सेल्फ में जो सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, वो क्यों सेल्फ सेटिस्फाइड है, या वो क्यों आत्मा राम है, अभी अभी वो बताएंगे आगे शांडिल ऋषि। तो एक तो उन्होंने कहा कि एक तो कृष्ण कैसे आत्मा राम है, और कैसे अब तक काम, अब तक काम है। तो उनके इष्ट अब तो, उनके कई कई परिवार के सदस्य है, और ग्वाल बाल भी है, गाय भी है, गोपिया भी है, अब तक काम। तो इन्हीं से उनको सब उनकी कामना, इच्छा, वांछा पूरी हो जाती है। इस प्रकार के वे आत्मा राम और आप्त काम है प्रेमाक्त अनुभूयते अनुभूयते। और जो व्यक्ति जो लोग जो भक्त कैसे है प्रेम से पूरित है कृष्ण भावना को जिनकी कृष्ण भावना जागृत हुई है कृष्ण भावना कृष्ण कॉन्शियस जो है कृष्ण भावना प्रेम से कृष्ण से कृष्ण के प्रेमी जो है या फिर प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेश विलोकयन्ति ही जैसे ब्रह्मा कहे ऐसे लोग भगवान को देख सकते हैं उनका। और शांडिल ऋषि भी कह रहे हैं अनुभूयते हाहा उनका अनुभव ऐसे लोग करेंगे करते हैं अनुभव करते उनको देखते भी है उनके साथ रह भी सकते हैं। कौन से प्रेमाक्त तो प्रेम से जो पूरित है प्रेम रस में जो डूबे है भक्त जो रसिक है रसिक रसिका भूमि भाव कहा ये जो कथा है कथा के लिए भी आप आमंत्रित हो किनके लिए कथा है रसिको आ जाओ भूमि भाव का आ जाओ भाविक भक्तो आ जाओ और इस कथा का पान करो। और तो इस कथा का पान करते 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 जब वे रसिक होंगे प्रेमांजन प्रेम का अंजन उनके आंखों में नेत्र अंजन से सुशोभित होंगे तो ऐसे व्यक्ति अनुभूयते उनको देख सकते हैं। और फिर आगे शांडिल्य ऋषि का आत्मा तो राधिका तस्य बड़ी बहुत सुंदर क्या बहुत सिद्धांत की बात और बड़ी सुंदर भी बात मधुर बात कही उन्होंने आत्मा तो राधिका तस्य तस्य कृष्णस्य आत्मा कृष्ण की आत्मा तो राधा है। क्या समझे कृष्ण की उसे ऐसा कहा का और कुछ भाष्य वगैरह हमने सुना रहे जैसे कहा शांडिल ऋषि कहे आत्मा तो राधिका तस्य तस्य कृष्ण की आत्मा तो राधा है तो आत्मा राम भी आत्मा राम क्यों है आत्मा में उनको आराम मिलता है क्या आत्मा आत्मा उनको आराम देता है तो कृष्ण की आत्मा तो राधा है तो कृष्ण को आराम क्यों मिलता है राधा आराम देती है आह्लादनी शक्ति भी कहलाती है भगवान को आह्लाद देती है आनंद देती है आराम देती है राधा राधा आत्मा तु राधिका तस्य एकात्मनावपि एकात्मनाव राधा और कृष्ण दो नहीं है एक ही आत्मा है ऐसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है प्रारंभ में ही। फिर क्या हुआ देह भेदौ गतौ तौ फिर देह भेदौ एक ही आत्मा राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है लेकिन फिर दो हो गए एक थे दो हो गए राधा और कृष्ण हो गए। और फिर पुनः चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे दो के ऐक्यम च अपतम तद्वयम् एक थे एक के दो हुए फिर दो के पुनः एक हो गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। और वो स्वरूप है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहि अन्य। आत्मा रामतया प्राज्ञै प्रोचते गूढ़ वेदिभिः। तो ये श्री कृष्ण का जो आत्मा रामत्व है, आत्मा रामत्व, आत्मा राम होना, आत्मा रामता जो श्री कृष्ण की है, तो जो वेत्ता है, विद्वान है, उनके द्वारा अनुभूयते, वे जिसका साक्षात्कार उनको होता है, वे अनुभव करते हैं। रहस्यम त्विदम एतस्य प्रकृतिः परमुच्यते। शांडिल्य मुनि कहते हैं कि भगवान जब प्रकृति के साथ खेलते हैं, प्रकृति के साथ उनका आदान प्रदान होता है, तो वह फिर वो भगवान की लीला हो जाती है, भगवान लीला करते हैं अपने प्रकृति के साथ, वे खेलते हैं, तो फिर उनकी लीलाएं प्रारंभ होती है, लीला होती है, भगवान प्रकट होते हैं और फिर लीला प्रारंभ होती है। लीलैवं द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकी। और यह और आगे रहस्य की बात शांडिल्य मुनि कह रहे हैं, भगवान के लीला के दो प्रकार बता रहे हैं। भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, एक प्रकार को वास्तवी कह रहे, वास्तवी, और दूसरी है व्यावहारिकी। ये वैसे नाम से हम, ये नाम नए होंगे, लेकिन ये प्रकार तो नए नहीं है, हम लोग अन्य स्थानों पर पढ़ते सुनते हैं। भगवान की प्रकट लीला और अप्रकट लीला, ये दो प्रकार, लीला के दो प्रकार, प्रकट लीला अप्रकट लीला। भगवान जब प्रकट होते हैं या तो उतरते हैं, अवतरति, भगवान उतरते हैं, या पर्दे के पीछे से फिर बाहर आते हैं, लीला का प्रदर्शन करते हैं, तो वो जो लीला है फिर प्रकट लीला, प्रकट लीला। तो भगवान श्री राम की प्रकट लीला दस सहस्र वर्षों तक चलती रही, राम की लीला दस सहस्र, कितने दस सहस्र, मतलब 10,000 और 10 शतानी चौ, 10 शतानी मतलब 1,000, 10,000 और 1,000, 11,000 वर्षों तक श्री राम की प्रकट लीला। और श्री कृष्ण की लीला 125 वर्षों तक श्री कृष्ण की प्रकट लीला, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला 48 वर्षों तक प्रकट लीला। तो ये प्रकट लीला, और फिर अप्रकट लीला, राम का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण चंद्र जन्मे, राम चंद्र जन्मे, चैतन्य चंद्र जन्मे, उस जन्म के पहले की लीला, और फिर 11,000 वर्ष राम संसार में प्रकट लीला का दर्शन, किसके उपरांत, कृष्ण 125 वर्षों के उपरांत और चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों के उपरांत, तो पहले और बाद में उपरांत वाली जो लीला, वो अप्रगट लीला। तो इस प्रकार ये प्रगट लीला, अप्रगट लीला या नित्य लीला, और भी नाम है नित्य लीला और फिर नैमित्तिक लीला या कोई प्रासंगिक लीला, या अंग्रेजी में कहते हैं इटर्नल और ओकेजनल, या ओकेजनल कोई कारण बनता है। यदा यदा ही धर्म शकला निर्भवति भारत तदात्मानाम सृजामि अहम्, मैं आता हूँ, यदा धर्म की ग्लानी होती है तब मैं प्रकट होता हूँ, बाहर आता हूँ या उतरता हूँ, दोनों भी बातें हैं। गोलोक से भगवान उतरे या फिर यही लीला तो चली रही थी, नित्य लीला पर्दे के पीछे। तो उसी को उस पर्दे के सामने आ गए भगवान, जन्म लिए और लीला प्रारंभ किए। तो ये दो लीला, लीला के दो प्रकार, वास्तविक और व्यावहारिक। वास्तवी तत्सं स्वसंवेद्या जीवानां व्यावहारिकी। तो जो वास्तवी लीला या नित्य लीला या अप्रगट लीला जो है, ये इसको तो जानते हैं भगवान के जो नित्य परिकर है, पार्षद है, वे उस लीला को जानते हैं। और अन्य जीवों को भगवान के उस लीला का दर्शन या अनुभव होता है। ये प्रकट लीला का दर्शन अन्यों को भी होता है, अन्य जीवों को भी होता है। अद्याम विना द्वितीया न, और शांडिल्य मुनि हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांडिल्य मुनि कह रहे कि वास्तविक लीला जो नित्य लीला है, तभी तो प्रकट लीला संभव है। यह प्रकट लीला का आधार है अप्रकट लीला या नित्य लीला। अगर नित्य लीला ही नहीं है, अप्रकट लीला ही नहीं है, वास्तविक लीला ही नहीं है, तो फिर व्यावहारिकी या प्रासंगिकी या प्राकट्य लीला संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं? हरि हरि। ऐसा रहस्य और कहीं पढ़ने सुनने नहीं मिला था, जैसे यहाँ शांडिल ऋषि समझा रहे इस विषय वस्तु को। और फिर आगे वे कहे, युवयोर गोचरम तु तल्लीला व्यावहारिकी। और तुम जिस लीला के, हे राजा परीक्षित, तुम और वज्रनाभ, तुम और ये जो 16,000 रानियां है, ये सारे रानियां, ये सारे वास्तविक लीला के तुम अंग हो। इसके कारण ही आपको जो दूसरी जो लीला, जो नित्य लीला है, अप्रकट लीला है, उसका दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप दूसरे लीला के अंग, पार्ट या एक व्यक्तित्व हो। तो राजा वज्रन आपने झुकाया, मुझे चिंता है, मुझे इस बात की चिंता है, ये सारा निर्जन बन यहां कोई है नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहां गए सब? इसका रहस्य कारण बता रहे, इसका कारण ये है कि तुम व्यावहारी की लीला के एक जी हो या व्यक्ति हो, इसीलिए तुमको वास्तविक लीला का दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन या वास्तविक लीला हो रही है, अप्रकट लीला हो रही है, नित्य लीला अभी हो रही है, या भक्त ही भक्त है, रौनक ही रौनक है, यहाँ तो अष्टकालीय लीला संपन्न हो रही है, यहाँ गोचारण लीला संपन्न हो रही है, रास क्रीड़ा संपन्न हो रही है, माखन चोरी हो रही है, सब सब हो रहा है, सब हो रहा है यहाँ। लेकिन वो नित्य लीला में, वास्तविक लीला में ये सब संपन्न हो रहा है, लेकिन तुम दूसरे लीला के अंग हो, इसीलिए तुम दर्शन नहीं कर पा रहे हो। अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम् भासते प्रेम पूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः। अत्रैव, यही तो, यही पर तो है ब्रजभूमि, सा ब्रजभूमि अत्रैव, वो ब्रजभूमि तो यही है। सुगोपितम, लेकिन गुप्त है, सभी देख नहीं पाते, लेकिन क्यों देख नहीं पाते, इसलिए है नहीं, ऐसी बात नहीं है। भासते प्रेम पूर्णानां कदाचिदपि सर्वतः, प्रेम पूर्णानां या प्रेमांजन छुरितानां, प्रेमांजन ऐसे भक्त आज भी अद्यैव देखी बारे पारे मायापुर में, नवदीप में भक्त कहते हैं गौरांग महाप्रभु की लीला आज भी हो रही है। कि जो बुद्धिमान या भाग्यवान जो है देखी बारे पारे आज भी उसको देख सकते हैं, गौरांगेर मधुर लीला। या वही वैसे गौरांग महाप्रभु जब आए 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में, तो देख रहे थे सारी वृंदावन की लीला का वो दर्शन कर रहे थे। या फिर हमारे षड गोस्वामी वृंद वे भगवान की सारी लीलाओं का, हे राधे ब्रज देवी के जललिते कहते हुए वे सर्वत्र दौड़ते देखने के लिए, कहा हो कहा हो कहा हो, जमुना के तट पर अब हो कि गिरिराज के शिखर पर हो कि कहा हो कहा हो, हे राधे हे ब्रज देवी के, हे ललिते हे नंद सुनो कुतः भूषांताविति सर्वत्र ब्रजपुरे। विफल होके सर्वत्र भ्रमण करते हुए षड गोस्वामी वृंद दौड़ते भगवान के लीला का दर्शन करने हेतु सर्वत्र जाते, तो आज भी संभव है। कदाचित द्वापर शांति रहो लीला अधिकारिणः, तो शांडिल ऋषि कह रहे कि जब द्वापर युग आता है, द्वापर युग 28वां द्वापर युग, तो उसके अंत में भगवान प्रकट होते हैं। और फिर भगवान जब प्रकट होते हैं तो जो जो भगवान के लीला में प्रवेश करने के अधिकारी है वे सब वहां पहुंच जाते हैं। समवेता असेंबल, सारे एकत्रित हो जाते हैं, जैसे कि शांडिल्य मुनि ने कहा अभी 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 इकट्ठे हुए थे भैया, 125 वर्षों तक वे एकत्रित थे, लेकिन अब वो लीला समाप्त हुई है, लेकिन भगवान थे और उनके लीला अधिकारी ना कई सारे यहाँ थे। मोरय अभिलास विलास कुंजे दिवो वास, हम प्रार्थना करते हैं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हे तुलसी महारानी क्या करो, मोरय अभिलास, मेरी अभिलाषा, क्या अभिलाषा है, विलास कुंजे दियो वास, वृंदावन के विलास कुंजों में हमें हमारा वास हो। तो हुआ ऐसी प्रार्थना जब वृंदा देवी देवी की जब सुनती है, ऐ निवेदन धरा, मेरा निवेदन है, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, अब मुझे भी अधिकारी बना दो। कैसा अधिकारी, तुम्हारी सेवा का, तुम जो कृष्ण की सेवा करती हो तो हम भी सहायता करेंगी तुम्हारी, ऐसा अधिकार हमें भी दो हे तुलसी महारानी। ऐसे कुछ डिहोड़ी कुछ भक्त कि कुछ डिहोड़ी प्रार्थना करते हैं, कुछ भक्त प्रार्थना जो सही नहीं है, ऐसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते हैं। मोरई अभिलाष अमेरिका देशे दियो वास, हमको वीजा मिल जाए प्रभु, हम कई बार अमेरिकन एम्बेसी आए गए, वीजा ही नहीं मिल रहा है। मोरई अभिलाष अमेरिका देशे दियो वास, वो तो बकवास हुआ ऐसा कहना। तो तुलसी महारानी जब हमारी प्रार्थना सुनेगी, हमारे आचार्य वृंद गुरुजन हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, तो वह उस लीला प्रवेश के हम भी अधिकारी बनेंगे। तो कौन कौन उसमें सम्मिलित होते हैं, स्वे सहावतरेत स्वेषु समावेशार्थ इप्सितः तदा देवादयो अपि अन्ये अवतरन्ति समन्ततः। तीन प्रकार के भक्त व्यक्तित्व भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं, भगवान की जब लीला होती है। एक है कौन, स्वेषु, अपने भगवान के स्वयं के जो परिकर है, राधा है, गोपिया, ग्वाल बाल है, नंद यशोदा है, कृष्ण जहां भी जाते हैं वे सब वहां पहुंच जाते हैं। तो ये वो एक एक पार्टी वो हो गए। दूसरे है जो साधना करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र सिद्धि कहते हैं, जब मंत्र की सिद्धि मतलब क्या, कृष्ण प्राप्ति, भगवत धाम प्रवेश, तो साधना से जो सिद्ध हो जाते हैं, साधन सिद्ध, तो साधन सिद्ध मतलब अब वे भगवान के धाम में लीला में प्रवेश करने के अधिकारी हो चुके हैं। ऐसे अधिकारियों को ऐसे साधन सिद्धों को भगवान सीधे अपने धाम में पहुंचाने के पहले भगवान स्वयं जहां लीला जिस ब्रह्मांड में उनकी लीला होनी है उस लीला में वहां प्रगट लीला में वहां वास्तविक की लीला में उस प्रासंगिक लीला में भगवान उन साधन सिद्धों का समावेश कराते हैं। समझ गए? ये दूसरी पार्टी प्रभुपाद उसको खूब समझाते हैं अपने ग्रंथों में प्रवचनों में। और तीसरी पार्टी है देवा देवादयः देवतागण भी भगवान की लीला में उनका भी प्रवेश समावेश। जब पृथ्वी रोती हुई क्रंदन करती हुई जाती है देवताओं के पास पाही माम त्राही माम रक्षा करो तो सारे देवता समझ जाते हैं कि नहीं ये हमारे बस का रोग नहीं है हम संभाल नहीं सकते। तो सभी जाते हैं ब्रह्मा उन सभी को क्षीर सागर के तट पर ले जाते हैं। तो फिर ब्रह्मा जब निवेदन करते हैं प्रभु को धर्मश ग्लानी रभवती धर्मश ग्लानी हुई है प्रभु धर्मश ग्लानी हुई है विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टों का संहार करने का समय आ चुका है प्रभु परित्राणाय साधु नाम भक्तों की रक्षा होनी चाहिए प्रभु। ऐसा जब निवेदन ये पृथ्वी देखो क्रंदन कर रही है आपके समक्ष है तो उस समय प्रभु समझ गया और मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन हे देवतागण आप भी यदुकुल में जन्म ले लो आप आगे बढ़ो मैं आ ही रहा हूं जस्ट नाउ कमिंग आप आगे बढ़ो आप यदुकुल में जन्म ले लो मेरी लीला में आप योगदान देना होगा आपको। तो इस प्रकार देवता भी भगवान के लीला में प्रवेश करते हैं। तो ये तीन प्रकार के भक्त व्यक्तित्व भगवान के लीला में उनका समावेश होता है। सर्वेषां वांछितं कृत्वा हरि हरि पानी सर्वेषां वांछितं कृत्वा हरिरंतरहितो अभवत्। तो इन सभी या तीनों प्रकार के भक्तों की वांछा इच्छा पूरी करने के उपरांत भगवान पुनः जब अंतर्धान होते हैं राम अंतर्धान हुए 11,000 वर्षों के उपरांत त्रिविधा लोकः सिता पूर्वं न संशयः। तो इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि ये तीन प्रकार के त्रिविधा लोकः स्थितः भगवान के लीला में थे इस पर संशय नहीं रखना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब चांडिल्य मुनि कह रहे कि उसमें से जो देवता पार्टी है देवता तो वे मथुरा में तो थे और उनके साथ फिर भगवान ने उन सब को ट्रांसफर किया ओवरनाइट। जब वो जरासंध और कालिया और भी राक्षस दोनों एक साथ आने वाले थे तो उनका खतरा था, तो भगवान ने सबको द्वारका में पहुंचा, वहाँ किला बनाया और समुद्र से जमीन ले ली, किला बनाया, उसमें सुरक्षित रखे सबको। और कृष्ण बलराम लौटे और जरासन के साथ फिर लड़ते रहे 17 सालों तक, फिर 18वें वर्ष लड़ाई नहीं की, सारा बोरिंग है, हर साल का रूटीन चली रहा, एक बार दो बार 17 बार हुआ तो थोड़ा फॉर चेंज कहो। भगवान द्वारिका गए तो उसी वक्त उसने डरपोक कही का, रणछोड़ जरा सुनने का, रणछोड़ कहा, रणछोड़ है डरपोक कही का। लेकिन जब वे द्वारिका में पहुंचे तो वहां तो स्वागत हुआ, रणछोड़ राय की सुस्वागतम रणछोड़। अच्छा हुआ आपने रण छोड़ा, अगर नहीं छोड़ते तो फिर आप वही के वही रहते, हम यही द्वारका में मरते अकेले आपके बिना, तो अच्छा हुआ आप रण छोड़े। तो हुआ तो यहाँ शांडिल्य मुनि कह रहे कि वो देवतागण यहाँ थे, फिर द्वारिका गए और उनके साथ तो मौसल युद्ध में एक दूसरों से युद्ध खेलते हुए, मौसल के साथ बड़ा घनघोर युद्ध होता रहा, सारे यदुवंशियों ने एक दूसरों को भी मार डाला और देवता भी उनकी मृत्यु हुई और सीधे उनको स्वर्ग पहुंचाए और अपने अपने पदवी को पुनः प्राप्त कराए देवता। तो देवता इस प्रकार, तो तीन में से देवता पुनः स्वर्ग लोक लौटे, अब दो पार्टी बच गई। तो वे आगे समझाते हैं, एक तो भगवान के पार्षद परिकर नित्य भक्त है और दूसरे जो साधना सिद्ध थे, साधना सिद्ध जप करते हुए और क्या क्या सब सेवा करते हुए, प्रचार कार्य करते हुए, जारे दाखे दारे दाखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश करते हुए और डिस्ट्रीब्यूट बुक्स ग्रंथों का वितरण करते हुए और क्या क्या सभी साधना है, सेवा है, जीवन भर किए, फिर अंते नारायण स्मृति ही, अंत में नारायण का स्मरण भी किया, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जीवन और प्रार्थना करते रहे प्रभु इतना तो करना जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। आप भी आ जाना और किसको, राधा को भी ले आना और ये और वो, और लेकिन करना क्या, इतना तो करना जब प्राण तन से निकले, तो गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण कितने भाग्यवान हो, हरिदास ठाकुर, हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर और सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी में जहाँ वे रहते थे, एक प्रातः काल को चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए वहाँ पहुँचे और हरिदास ठाकुर उन्हें चैतन्य महाप्रभु के चरण उनके हाथ में थे, हरिदास ठाकुर के हाथ में थे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह और आंखों से देख रहे थे वो मुखमंडल चैतन्य चंद्र का मुखमंडल और फिर मुख से कहे वे श्री कृष्ण चैतन्य। दिस इज ये परफेक्शन है, ये जीवन की सिद्धि है, इतना तो करना स्वामी। तो ये जो पार्टी है, ये जो साधन सिद्ध जो भक्त है, ये साधन सिद्धों को अपने जो अंतरंग या नित्य मुक्त भक्त जो है उनके साथ उनको मिला देते हैं, दोनों एक ही हो गए, अब कोई भेद नहीं रहा, समझ गए। तो तीन थे देवता, तो जहां से आए थे वही फाइनली अंततो गत्वा लौट गए, बच गए दो। तो इन तो साथ में रह रहे के साथ में भगवान की लीला में, भगवान के साथ रह के भगवान की लीला में योगदान करते 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 फिर वे अंतरंग भक्तों के साथ ही हो गए, उनके खंधे को खंधा मिलाते हुए फिर उनका भी सेवा और मिलजुल के रहना। तो इस प्रकार विधाय स्वीय नित्येषु समावेशितांतदा। तो जो अलग थे, दो थे, दो को एक ही कर दिए भगवान। नित्यः सर्व अयोग्येषु दर्शन भावतां गतः। तो लेकिन नित्यों का, नित्य भक्तों का, वैसे नित्य एक भगवान का और फिर नित्य भक्तों का दर्शन करने के जो अयोग्य है, जिनमें ऐसी पात्रता नहीं है, ऐसी पात्रता नहीं है। विद्या ददाति विनयम का, विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या करती है, विनय देती है। विद्या ददाति विनयम या विनम्र बनाती है। फिर आगे का विनयात याति पात्रतः, विनय से व्यक्ति, विनयी व्यक्ति पात्र बन जाता, पात्र बन जाता, पात्र। फिर वो धारण कर सकता है, जो प्राप्त हुआ उसको धारण कर सकता है, पात्र में छलनी, छलनी कहते हैं छलनी, छलनी माता है समझती, छलनी ऐसा ही कुछ कहते ना, सीव, तो उसमें जो भी रखो डालो वो नीचे गिर जाएगा, उसको पात्र नहीं कहेंगे, पात्र जो धारण करे। तो जो पात्र हुए हैं, कृष्ण भावना के पात्र बने हैं, तो जो अयोग्य है, जिनके पास योग्यता नहीं, जो पात्र नहीं, वे उनको दर्शन नहीं होगा भगवान के नित्य लीला का और नित्य पार्षदों का। तस्मान्नते कार्या वज्रनाभ मदाज्ञया मत तस्मा चिंता न का। इसीलिए पुनः कहते आप लोग जो देख नहीं पा रहे हो, अब एक तो आप वास्तविक लीला के अभी अंग हो, वो तो ना वास्तविक लीला और या वास्तविक, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उपाय बताता हूं ताकि तुमको दर्शन होगा भगवान की जो नित्य लीला है, अनित्य परिकर भी है, जिनके दर्शन नहीं होने के कारण को सुना सुना सा लग रहा है, यहाँ तो कोई है नहीं, निर्जन बन ही है, बस कुछ ही लोग है, हम है, ये रानी है और कुछ लोग, सब कहाँ गए? तो तुम देख पाओगे, गए आए कहीं नहीं, यही है। तो मैं उपाय बताता हूं, ऐसा ऐसा करो। ओके, तो वासय अत्र बहुन ग्रामान संसिद्धिस्ते भविष्यति। इस ब्रजमंडल में तुम कई सारे ग्रामों की, गांवों की, कस्बों की स्थापना करो। कृष्ण लीला अनुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः। और उन सारे ग्रामों को अलग अलग नाम दो, उन उन स्थानों पर या गांवों में या उस क्षेत्र में जो भगवान की लीला हुई है उसके अनुसार उन गांवों को नाम दे दो। त्वया वासयता ग्रामान संसेव्या भूरियं परा। और तुम भी उन उन ग्रामों में रहा करो। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नंदीग्रामे बृहत्सानो कार्यराज्यस्थिति स्वया। अपनी छावनियां बनाओ, कोई टेंट बनाओ और जहां तहां समय समय पर तुम रहा करो, स्थानों का वास करो, सेवन करो। नदी अद्री द्रोणी कुंडान कुंजान संसेवस्तस्तव। तो कुंडों में खूब स्नान करो, गोवर्धन के तलहटी में रहो। नदियों में स्नान करो, जमुना मैया की जमुना का वास करो। सच्चिदानंद भूरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नतः। तव कृष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहात्। तो ये भगवान की लीला स्थली भूमि सच्चिदानंदमयी है, सच्चिदानंदमय ये वृंदावन धाम। तो उनका हम जानेंगे कैसे कि भगवान की लीला कहाँ, कौन सी लीला कहाँ हुई, कौन सी लीला कहाँ हुई, ये हम कैसे जान पाएंगे? तो वह मेरे आशीर्वाद से, स्फुरंतु मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से, मेरे आशीर्वाद से ये सारा संभव होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हमारे हृदय प्रांगण में ये सारा ज्ञान स्फुरित होगा, उदित होगा। तुम समझ जाओगे भगवान की कौन सी लीला कहाँ हुई, तो उसके अनुसार तुम वहाँ उन ग्रामों को नाम भी दो और तुम वहाँ रहना भी प्रारंभ करो। तुम रहो अपनी जनता के साथ, रानियों के साथ भी वहाँ रहना प्रारंभ करोगे, तब क्या होगा? वज्र संसेवनाद्रश्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति। तो तुम्हारे ऐसे ब्रज भ्रमण, ब्रज सेवा, ब्रज सानिध्य से प्रसन्न होंगे, एक व्यक्ति प्रसन्न होंगे, कौन? उद्धव प्रसन्न होंगे तुमसे। उद्धव जो इसी ब्रज भूमि में रहते हैं, अब कल पुनः कहा रहते हैं वगैरह की चर्चा, तो वे तुम्हें मिलेंगे। उद्धवस्त्वा मिलिष्यति। और जब उद्धव मिलेंगे तो फिर ततः रहस्यमे तस्मात् प्राप्स्यसि त्वं समात्रकः। तो फिर वे पूरे रहस्य का उद्घाटन करेंगे तुम्हारे लिए और तुम्हारी माताओं के लिए, भगवान के पत्नियों के लिए। यहाँ के सारे लीलाओं का दर्शन होगा। एमं उक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णं अनुस्मरन्। तो इतना समझा बुझा के, सलाह दे के शाण्डिल्य मुनि कृष्णम अनुस्मरन्, कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किए। विष्णु रातोथ व्रजस्य पराम प्रीतिम अवापतुः। तो शाण्डिल्य मुनि के सत्संग से, मार्गदर्शन से, प्रोत्साहन से, रहस्य के उद्घाटन से ब्रजमंडल के व्याख्या और वर्णन से विष्णु रात मतलब परीक्षित, जिस परीक्षित के रक्षक स्वयं विष्णु कृष्ण, इसलिए विष्णु रात और वज्रना बड़े ही प्रसन्न हुए। और इसी के साथ इस महात्म्य का प्रथम अध्याय, प्रथमो अध्याय समाप्तम। तो कल, आज तो क्या तो मैंने कल रानिया भी जो भी चिंतित है और कृष्ण कहा है या यहाँ के और भक्त कहा है, अकेलापन जो महसूस कर रही है, वो भी उनकी मुलाकात जमुना मैया से होती है। फिर जमुना उनको, जैसे शाण्डिल्य मुनि आज हमने सुना, जैसे उन्होंने मार्गदर्शन किया और कहा कि हाँ मिलेंगे, ऐसा ऐसा करो। तो उद्धव मिलेंगे तो जमुना मैया भी कहेगी रानियों को, तुमको भी मिलेंगे उद्धव। क्या करने से उद्धव मिलेंगे, कहाँ उद्धव मिलेंगे, ये सब भी कल के सत्र में हम यमुना से, यमुना मैया की, यमुना और कृष्ण पत्नियों का संवाद में हम सुनेंगे और फिर संवाद प्रारंभ ही होने वाला है। गौर प्रेमानंदे हरी हरि ओम।